सुबह का वक्त था। रसोई से गर्मागर्म पराठों और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी लोग एक एक कर जुट चुके थे। टेबल पर सजावट सलीके से की गई थी। ताज़ा फलों की प्लेटें, टोस्ट, मक्खन, जूस और स्टील के जग में रखा ठंडा पानी। टेबल पर राजेश जी बैठ चुके थे। उनके सामने अखबार खुला हुआ था, लेकिन नज़रें ज़्यादा देर तक अखबार पर टिकती नहीं थी। वे घर के हर सदस्य को ध्यान से देख रहे थे। उनके बगल में एक कामिनी जी मानव बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह अपनी बेटी के लिए चिंता और महत्वाकांक्षा झलक रही थी। थोड़ी ही देर में मोनी नीचे आई, अब भी पूरे आत्मविश्वास और सजावट में। कपड़े बदल, हल्की सी पिंक ड्रेस, चेहरे पर ताजगी और चाल में अदा। उसने आते ही टेबल पर सबसे पहले विक्रम की ओर देखा, फिर कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल पास बैठ गई। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी और प्लेट में टोस्ट रखा। वो आज कुछ थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। फिर आई रैना, चेहरे पर वही सहजता, अपने पिता के पास बैठ गई। उसकी उपस्थिति ने जैसे पूरा माहौल बदल दिया। बिना किसी सजावट के भी उसकी सुंदरता उतनी ही प्रखर थी कि मोनी को भीतर ही भीतर फिर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। नाश्ते की शुरुआत ही हुई थी कि मोनी ने बात छेड़ी। विक्रम, उसने अचानक कहा, कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे इस बार बहुत ही शानदार हो, मतलब रॉयल स्टाइल में, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन। सभी की नज़रें उसकी ओर उठीं। कामिनी जी तुरंत बोली, हाँ बेटा बिल्कुल, विक्रम तुम्हारा पति है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो तुम्हारे लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा। मोनी ने अपने लंबे बालों को एक झटके से पीछे किया और संतोष भरी मुस्कान दी। विक्रम ने हल्की सी झिझक के साथ जवाब दिया, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं एक बड़ा सेलिब्रेशन रखूंगा, सब कुछ आपकी उम्मीदों के मुताबिक। बात तो विक्रम ने कामिनी से कही थी, लेकिन उसकी नज़रें उसी पल रैना पर टिक गईं। रैना चुपचाप प्लेट में पराठे का टुकड़ा तोड़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही कोई सवाल, लेकिन विक्रम के मन में हलचल थी। क्या उसे ये सब बुरा लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचे मैं मोनी के कहने पर सब कुछ कर रहा हूँ। रैना ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी जरूर उठी थी। नाश्ते के बाद सभी धीरे धीरे उठने लगे। राजेश जी अखबार मोड़कर कमरे में चले गए। कामिनी और मानव भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मोनी ने विक्रम से कुछ धीमी धीमी बातें की और फिर ऊपर चली गई। रैना ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी पीछे से विक्रम ने आवाज दी, रैना ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रैना ने पलट कर देखा और शांत स्वर में बोली, नहीं मैं खुद जा सकती हूँ, इसकी जरूरत नहीं। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, कल तो तुमने मुझे लिफ्ट ली थी और आज मना कर रही हो। रैना ने सीधे उसकी आंखों में देखा, कल मैं लेट हो रही थी इसलिए, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, विक्रम ने जिद भरे लहजे में कहा, प्लीज मुझे ये काम करने दो। रैना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और बाहर निकल गई। विक्रम उसके साथ हो लिया। बाहर कार खड़ी थी। विक्रम ने दरवाजा खोलकर रैना को बैठने का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले बैठ गई। कार स्टार्ट हुई और सड़क पर चल पड़ी। काफी देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ गाड़ी की आवाज थी और खिड़की से आती हवा। आखिरकार विक्रम ने धीरे से कहा, रैना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मोनी का बर्थडे मैं सिर्फ इसीलिए बड़े पैमाने पर मना रहा हूँ क्योंकि वो जिद कर रही है, वो परेशान कर रही है, वरना मेरे लिए ये सब इतना मायने नहीं रखता। रैना ने उसकी ओर ना देखते हुए जवाब दिया, देखो विक्रम वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना ही चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, सच बताओ। रैना ने हल्की सी मुस्कान दी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आफ्टरऑल तुम दोनों पति पत्नी हो, अगर उसकी जरूरत तुम पूरी नहीं करोगे तो कौन करेगा। विक्रम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके मन में और भी सवाल उठे, क्या सच में उसे बुरा नहीं लगा या वो सिर्फ दिखाने के लिए कह रही है। उसने फिर पूछा, पक्का तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? रैना ने इस बार सीधे उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अनकही बेचैनी झलक गई। विक्रम ने भी उसे पढ़ लिया। उस पल कार की खामोशी में जैसे दोनों के बीच एक अनजाना असमंजस ठहर गया था। मोनी, उसकी माँ कामिनी और मानव कमरे में बैठकर नाश्ते के बाद फिर से अपनी ही चालाकियों में लग गए। कामिनी जी ने सबसे पहले मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही किया कि विक्रम से डिमांड की तुम्हारा बर्थडे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करने का, यही तो मौका है तुम्हें अपनी जगह पक्की करने का। मोनी ने गर्व से सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ माँ मुझे करना ही था, आखिर वो मेरा हस्बैंड है, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा ये उसका फर्ज है। रैना जैसी कोई लड़की बीच में आकर कभी मेरी जगह नहीं ले सकती, मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी। मानव हंसते हुए बोला, वैसे दीदी अगर आपका बर्थडे इतना धूमधाम से होगा तो आप जीजा जी से कोई बड़ा सा गिफ्ट भी लेना, तब तो मजा आ जाएगा। मोनी ने आंखें सिकोड़कर आत्मविश्वास से कहा, गिफ्ट की चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे पता है वो मुझे कुछ खास ही देंगे, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। कामिनी ने गंभीर स्वर में टोका, नहीं बेटा
आदमी लोगों का कोई भरोसा नहीं, आज हाँ करेंगे कल टाल देंगे। तुम खुलकर गिमान करना, उन्हें डायमंड का अच्छा सा सेट ही बोल देना, उसमें तुम्हारी शान और बढ़ेगी। आखिर सबको दिखना भी चाहिए कि विक्रम तुम्हें कितना मानता है। मोनी ने आईने में अपना चेहरा निहारा और होंठों पर मुस्कान फैल गई। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, इस बार बर्थडे ऐसा होगा कि हर कोई देखेगा और कहेगा मोनी की जिंदगी कितनी रॉयल है। कमरे की हवा जैसे उनके षड्यंत्रों की गंध से भर गई थी।